इसमें जो विभिन्न प्रकार की लीलाएं हैं भागवत की, वो अद्भुत मधुर तरंगे सब हैं। भगवत भक्त लोग रसिक एवं भाव छक करके इस रस को पान करके प्रमत्त हो जाते हैं और आने आते ही ब्रज को लाभ कर जाते हैं, संसार को पार करते हैं। श्रीमद्भागवत में ज्ञान और वैराग्य के सहित तथा भक्ति, इसमें मुख्य ज्ञान वैराग्य उसके पुत्र और पुत्र के रूप में, नैष्कर्म आवश्यकृत श्रीमद्भागवत में है। नैष्कर्म माने शुद्धा भक्ति प्रेमा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य पहले उसके अंग जैसे मालूम पड़ते हैं किंतु अंग नहीं, अपने आप को जैसे पुत्र पैदा होता है ऐसे ही हो जाते हैं भक्तों में। श्रीमद्भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, भगवत स्वरूप है, जिसमें अवगाहन करने से, जिसकी एक कड़ी भी सुनने से संसार की सार्वकालिक माने समस्त समयों की और पर्वदेशी समस्त देशों की समस्त समस्याओं का समाधान इसमें है। ऐसी कोई समस्या नहीं है। आज बड़ी बड़ी समस्याएं हमारे राष्ट्र के सम्मुख, देश के सम्मुख, विश्व के सम्मुख आ रही है, उनका कोई समाधान नहीं मिल रहा और ये समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। इन सब का समाधान सहज रूप में श्रीमद्भागवत में केवल कोई एक छोटा सा उपदेश भी पालन करने से हो सकता है। आज देखते हैं कि जितने लोग अपने को सभ्य कर रहे हैं, बड़े सभ्य बन रहे हैं, पढ़े लिखे बन रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मदिरा पानकर रात में कोई एक होता है नाइट क्लब होता है, नाइट क्लबों में पढ़े लिखे लोग अपनी पत्नियों के साथ ले जाते शराब पी लेंगे, सिगरेट भी पियेंगे, अपनी स्त्रियों को दूसरे पुरुषों के साथ में नाक लगा, अपने दूसरी स्त्री के साथ मद में सब पड़े हुए हैं, ये कोई सभ्यता है? आजकल टीवी टाइम कर रहे हैं, ये टीवियों में और ये सब चीजें में क्या चीज देखते हैं ये भद्रलोक? यदि कहा जाए कि ये संसार के सबसे असभ्य लोग हैं, इनको कदापि भी ऊपर शांति नहीं हो सकती। यदि श्रीमद्भागवत से कोई एक उपदेश का भी ये लोग पालन करें तो उनका कल्याण हो सकता है। लाखों लोग सुनने के लिए वो सब बातें एकत्रित हो जाएंगे, ये सब अच्छी चीज है जिससे कि हम लोगों का कल्याण हो सकता है। कल्याण की बातें सुनने के लिए निमंत्रण देने पर भी नहीं आएंगे, उनको इन बातों में ही घृणा है अपने कल्याण से। परीक्षित महाराज जी जैसे लोग जिनको मृत्यु का भी संपात मिला, अपने अंतिम समय पर कोई भी रास्ता जब नहीं किया गंगा के किनारे बैठ गए, खाना पीना सब छोड़ करके राज्य इत्यादि सब छोड़, बड़े भारी विद्वान थे, समग्र पृथ्वी के राजा थे, उनके बड़े बड़े मंत्री थे, भोगों के उपकरण उनकी कोई कमी नहीं थी, बड़े भारी ज्ञानी भी थे, सब छोड़ छाड़ करके मुझे क्या करना चाहिए, इसलिए गंगा के किनारे बैठे। सबको मरना है, आज मरे कल मरे परसों मरे फिर तो बात करते बसों में मरे मरे मरना चाहिए। यदि मृत्यु आ जाए और अभी एक मिनट के अंदर में मृत्यु होनी है, क्या करना चाहिए? क्या करेगा आदमी? अर्थ उसको कोई लाभकारी होगा? अर्थ विश्व ब्रह्मांड की सारी संपत्ति उसको दे दी जाए अभी उसको मृत्यु हो, हाथ में लेकर के क्या करेगा? कोई भी चीज को शांतिदायक नहीं होगी। एक बार मन में एक कृष्ण नाम कहो, सुनाओ हरे कृष्ण हरे कृष्ण, जय श्री राधे वत्सनाथ धन्य राधे राधे। उनको तो 7 दिन का समय था, इसलिए श्रीमद् भागवत सुना। और यदि 1 मिनट का समय है तो क्या करते, क्या करते वो? 1 मिनट का समय, 1 मिनट में मरना है। एतत् निर्विद्यमानानां शिक्षतानुकूलो भयं योगिनां निर्णितं हरिर्नामानि। बस नाम सुनो, बस गंगा जी तुलसी का पानी लेकर के मुख में हरे कृष्ण राम राम बस करा दो बस। 7 दिन का समय था उन्होंने श्रीमद् भागवत, इसलिए जगत में जितनी भी समस्याएं हैं समस्या मत का समाधान श्रीमद् भागवत के यदि अच्छी तरह से श्रवण करें तो, जो श्रवण करके करेंगे। मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं, इसमें अच्छी प्रधानता मत रखें। परीक्षित महाराज जब सुन रहे थे भागवत, अपने गुरु जी को क्या दक्षिणा दी? उन्होंने क्या किया दक्षिणा में? परीक्षित महाराज जी जब आरंभ किया भागवत 7 दिन सुनाया तो उनके गुरु जी जब जाने लगे थे उनको क्या दिया? रुपया पैसा लेकर के उनको सम्मान किया? जब गुरु जी आए तो रुपया पैसा लेकर के नोटों का बैंड लेकर के गले में लगाया जाए? भागवत का तात्पर्य है शुद्ध भक्ति। यदि हम लोग पाठ करेंगे प्रवचन करेंगे, यदि दो एक लोगों को भी शुद्ध भक्ति के तरफ में यदि मोड़ दिया, हम समझेंगे हमारा भागवत करना सार्थक है। हम लोग और पाठकों की तरह में पाठ करने नहीं आए, अर्थ हमारा उद्देश्य नहीं है। आप लोग हम लोगों को कितना पैसा देंगे? पैसा हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आपका हृदय भक्ति से भरे, जो परीक्षित महाराज जी को सुखदेव जी ने भरा था। इसे सुख रूप में यह भक्ति लेने की चेष्टा करेंगे। जैसे एक आदमी भी यदि भक्ति लिया तो वो भागवत की कथा पूरी संपन्न। परीक्षित महाराज की सभा में लाखों लोग थे, उस समय उन्होंने भागवत का पाठ किया। उसमें कर्मी भी थे, ज्ञानी थे, योगी थे, विषयी थे, गृहस्थ थे, त्यागी थे। उस सभा में नारद जी थे, व्यास जी थे, पराशर जी थे व्यास जी के गुरु, गौतम कभी हबी अंतरिक्ष पलायन इत्यादि, वेद उपनिषद मूर्तिमान रूप धारण करके उनके सभा में स्त्री और पुरुष का धारण करके बैठे थे। और उस समय सुखदेव गोस्वामी जी ने ये भागवत की कथा जिस समय सुना रहे थे, उस समय देवता लोग उपस्थित थे। बोले जी ये अमृत का कलश ले लीजिए और भागवत हमको दे दीजिए। हंसने लगे, ये तुम लोगों के लिए अमृत कलश ही बहुत अधिक है, तुम लोग इसके सुनने के लिए योग्य नहीं। श्रीमद् भागवत से बढ़कर के और कोई अमृत नहीं। उनकी उपहास करके उनको लौटा दिया और जिसको पास ये साधारण जिनके अंदर में श्रद्धा थी, जिसको भगवान की भगवत भक्ति की आवश्यकता थी, उनको उन्होंने श्रीमद् भागवत सुनाया। वो लोग लौट गए। श्रीमद् भागवत में ये सबसे पहले सब ऋषि लोग एकत्रित हुए सुन ले, कली का प्रारंभ था। भागवत सबसे पहले कहां हुई? परीक्षित जी की सभा में। दूसरी हुई सनत कुमार ने नारद जी को सुनाया और उसमें भक्ति और उनके दोनों लड़के ज्ञान वैराग्य जी पर, उनके ज्ञान वैराग्य जो लड़के थे जो बूढ़े हो रहे थे और नौजवान हो गए, और भक्ति को बहुत आगे दी, ये दूसरी बार। और तीसरी बार हुई भुंडुकारी को सुनाने के लिए गोकर्ण ने सुनाया, ये तीसरी बार। सबसे पहले यदि रस देखा जाए तो ब्रह्मा जी को नारायण ने सुनाया चतुर्श्लोकी चार श्लोकों में, उसी को ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाया और नारद ने सुनाया व्यास जी को। इस तरह से एक परंपरा आई, एक दूसरी परंपरा भी आई संकर्षण जी से, संकर्षण जो राम है बलदेव, उन्होंने संख्यान ऋषि को ब्रह्मा जी को बतलाया, ब्रह्मा जी ने संख्यान ऋषि को बतलाया और उन्होंने बृहस्पति को बतलाया, बृहस्पति ने उद्धव जी को बतलाया। एक पद्धति ये है, इस तरह से दो पद्धतियों से श्रीमद्भागवत। इसमें सबसे पहले सुख गोस्वामी बैठे थे भागवत नैमिषारण्य में कथा हो रही, और सनों का भी 88,000 ऋषि लोग श्रद्धालु सब ऋषि लोग बैठे थे। उन्होंने पहले सुखदेव गोस्वामी जी को गोस्वामी ने प्रणाम किया, प्रणाम किया यं प्रव्रजन तमनुपेतम अपेतकृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आदि भाव पुत्रे तन्मयतया सको विनेतु तम सर्वभूत हृदय। सुख गोस्वामी दो हैं, एक लोमहर्षण सुख है और एक उग्र सवार सुख है। लोमहर्षण सुख पहले पुराण सुना रहे थे ऋषियों को कलयुग के डर से, इतने में बलदेव प्रभु जी आए। जब बलदेव प्रभु जी आए तो सुख गोस्वामी लोमहर्षण सुख ने उठकर उनका स्वागत नहीं किया, जैसे ये आ रहे हैं बैठेंगे सुनेंगे। वो आते ही देखा जैसे ईश्वर के अभिवादन नहीं किया, और ये सब जो ऋषि लोग बैठे हुए हैं हजारों इनसे भी ऊंचे ऊंचे हैं, और उनको भी ये तुच्छ समझता है, इसलिए पक्का भागवत का नहीं हो सकता, इसलिए गले में हाथ दे दिया और वो कट गया गला। सब ऋषि लोग बहुत घबरा गए, फिर उनके कहने से उसके छोटे से बच्चे को लेकर के व्यासासन पर बैठा और अपनी सारी शक्ति उसमें संचरित कर दी। बड़ा दीन विनयी विद्वान लोग उसी को कहते हैं खूब पुरस्कार वाले, एक बार सुन लेने से कभी नहीं भूलते थे। यही परीक्षित जी की सभा में जबकि सुखदेव गोस्वामी जी हरि कथा कह रहे थे, उसी समय इन्होंने सारी भागवत को सुना। अब वही इस कथा को यहां पर कह रहे हैं, किससे सौनक आदि ऋषि और किसने ऋषि, उन्होंने प्रणाम किया अपने गुरु जी को। यं प्रव्रजन तमनुपेतम अपेतकृत्यम, मैं अपने गुरु जी को जो भगवत स्वरूप है, सर्वभूत हृदय समस्त भूतों के हृदय में सब कुछ जानने वाले हैं, अंतर्यामी भी हैं, सब कुछ जानते हैं, जैसे भगवान सब कुछ जानते हैं ये भी जानते हैं, सब प्राणियों पर अहेतु की कृपा कृपालु है, ऐसे गुरु जी को प्रणाम करता है। जो माता के गर्भ से निकल कर गई साथ ही साथ में जब ये पवित्री के निकाल हुआ, कोई संस्कार नहीं हुआ, स्नान भी नहीं किया, माता के गर्भ से निकल करके और वन में चले, व्यास जी उनके पिताजी पीछे पीछे हाथ करते हुए चले, वन में उसकी प्रतिध्वनि हुई, हा पुत्र वो कह रहे हैं तो वो कह रहे हा पुत्र, अरे तू किसको हा पुत्र कह रहा है, कौन किसका पुत्र, कौन किसकी भार्या है, कौन किसका पिता, कौन किसका माँ, ये ज्ञान नहीं। ये व्यास जी उनके पीछे पीछे, इतने बड़े ऋषि जो भगवत स्वरूप भगवान नारायण के अवतार, उनके पीछे हाथ प्रकाते हुए मोह से क्या चल रहे हैं? नहीं, उन्होंने देखा जो कि ये जगत में योग्य है जिसको भागवत पढ़ाया जा सकता है। मैंने भागवत आविष्कार किया, सुनाने लायक कोई व्यक्ति नहीं है, संसार से परम विरक्त हो उसको हम सुनाएंगे। तो ये बेटा तो हुआ था कि तू ये जंगल से जा रहा, चले गए। थोड़ी देर के बाद में देखा सुंदर सरोवर है, सुंदर दृश्य है, पहाड़ी झरने हैं और उसमें ये कुछ स्त्रियां स्नान कर रही नंगी। सुखदेव गोस्वामी जी चले गए, वो स्नान करती रही और जब ब्यास जी आए पकी हुई दाढ़ी श्वेत के हजारों वर्ष की आई, जो सामने गए थे वही वो लड़कियां कपड़े पहन करके आकर के प्रणाम करके लज्जित होकर के दूर खड़ी हुई। ब्यास जी ने कर पूछा, हमें देख करके लज्जित हो गई, तुम हमारी बेटी की बेटी की बेटी हो, छोटी अभी, मैं बूढ़ा बड़ा, हमसे लज्जाई, और हमारा 16 वर्ष का बच्चा नौजवान आगे आगे जा रहा है, इससे तुमको कोई लज्जा नहीं है क्यों? उन्होंने कहा कि इसकी दृष्टि में हम तो लकड़ी के समान हैं। उन्होंने लड़की पुरुष है कि नहीं हमारे तरफ ने देखा ही नहीं और आप हमसे पूछ रहे हैं, ऐसा संसार में उनको विरक्ति, नंगे रहते थे, हवा भी खाते थे कि नहीं, संसार से कोई मतलब नहीं। ऐसा आदमी भगवान का अधिकारी है सुनने का। उनको उन्होंने पहली के माध्यम से एक एक श्लोक सुनवाया, वो श्लोक सुनते ही पागल हो गए। ये सब चीजें पीछे आएंगी, मैं संक्षेप में बतला रहा हूं। बरहा पीरम नटवर बहु, ये श्लोक सुनाया, पागल हो गए श्लोक, और पीछे पीछे दौड़े आए व्यास जी के पास में। मैं कि जिस पुस्तक में, जिस ग्रंथ में ये श्लोक है, मैं उस ग्रंथ को पढ़ना चाहता हूं, मैं तो यही चाहता था। इसलिए उनको फिर से पढ़ाया। सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा है, मैं तो एक निराकार वादी था, भगवान का आकार नहीं मानता और मुक्ति की तरफ में दौड़ रहा था। ठीक हो सर, परमित तो भी निधुन वो करेंगे। मैं निर्गुण्य में, निर्गुण मैंने क्या, जिसमें कोई गुण नहीं है, निराकार निरंजन अव्यक्त अनादि, मैं उस ब्रह्म में परिनिष्ठित था। किंतु जिन हमारे पिता ने, गुरु ने हमको भागवत की दो चार श्लोकों को सुनाकर हमारे चित्त को आकृष्ट कर लिया और राधा कृष्ण के चरणों की सेवा में उनके प्रेम में हमको डुबो दिया, ऐसे पिताजी को मैं नमस्कार करता हूं। कोई ऐसे सुखदेव गोस्वामी जी हैं कौन? संक्षेप में जो एक बात करके मैं आज का वक्तव्य समाप्त करूंगा, इसके बाद में भागवत आरंभ हो। सुखदेव गोस्वामी जी संसार के कोई व्यक्ति नहीं है, ये नित्य वृंदावन के राधा कृष्ण के ये बड़े प्रिय सूक हैं। जबकि कृष्ण के लीला समाप्त हो गई, मैंने ऐसे प्रिय सुख थे जो कभी कर्णपुर में अपने गोपाल सुख में वृंदावन चमक में वर्णन किया है। राधा जी के बड़े प्रिय सुख थे, अपने हाथों पर इस प्यारे सुख को बैठाकर दूध और अन्न नहीं तो अनार का दाना दाना अपने हाथों से खिला दी और अपने हाथों से बाएं हाथ पर बैठाकर दाएं हाथ से प्यार करती थी और कहती थी बोलो तो कृष्ण कृष्ण, तो वो सुख भी ऐसे करता था। फिर राधा जी के स्वर में, ऐसे ही सुंदर मधुर रूप में कृष्ण कृष्ण करता है। राधा जी अत्यंत आह्लादित हो जाते। एक दिन राधा जी हाथों से स्नेह कर रही थी और पक्षी जैसे चंचल होते हैं इनके हाथों से उड़ गया और नंद गांव की तरफ में चला। नंदगांव और बरसाना दोनों पास ही पास हैं, अधिक दूर नहीं। नंदगांव से बरसाना, बरसाना से नंदगांव दिखता है, दिखता है मैंने एक ही परस्पर एक बगीचे का अंतर है। तो वो सिर्फ पक्षी उड़ करके चला गया नंदगांव के पास में और वहां पर श्याम सुंदर एक तमाल वृक्ष के नीचे बैठ करके मधुमंगल से कुछ बात कर रहे थे। इतने में वहीं पर तमाल वृक्ष की डाल पर बैठ गया और बड़े मधुर स्वर से कृष्ण 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 करने लगे। कृष्ण इधर उधर देखने लगे, ये तो राधा जी की का स्वर मालूम होता है, इतना मीठा। देखें तो कोई आदमी नहीं, बड़ी मुश्किल से देखा एक सुंदर सा सुख पक्षी बैठा है। कृष्ण ने बड़े मधुर स्वर से उसे बुलाया और बुलाते ही वो उनके हाथों पर बैठ गया, कंधे पर बैठ गया, फिर हाथ पर, और उसको बड़े प्यार से उसको सहलाने लगे। कहो तो तुमने क्या कहा? फिर वैसे कहा कृष्ण कृष्ण, और उसके बाद में कहता है ओह मैं यदि संसार में कोई दुर्भागा है तो मैं नहीं, श्रीमती जी के किशोरी जी के हाथों पर पल रहा था, मुझे प्यार के साथ में खिला रही थी, स्नेह करती थी, दुर्भाग्यवश उनके हाथों से उड़ गया और यहां पर पहुंच गया। कृष्ण सुनकर के और भी बड़ी प्रिय स्थिति उनकी हुई, वो भी अपने हाथों पर लेकर के उनको सिखलाने लगे, तू बोलो तो राधे राधे, वो भी राधे राधे कहने लगे। और कृष्ण ने कहा कि आज से अब इसको कभी भी अपने से जुदा नहीं करूंगा, सब समय अपने पास रखूंगा, इसलिए अपने पास रख लिया। इतने में ललिता विशाखा जी आई, कृष्ण कहा ये तो मेरी सखी का बिना इसके सुख पक्ति चरा नहीं सकती, इसे तुम दे दो। मैंने कहा यदि उनका है तो ले जाए, उन्होंने बहुत लेने की चेष्टा की नहीं लिया। उन्होंने कहा कि यदि आप इसको रखना चाहते हैं तो किसी की सामर्थ्य नहीं है ले जाए, तब हाँ किशोरी के भी आ जाए और बुलाइए तो ये चला जाएगा, किशोरी जी यहाँ पर किस लिए आएंगे, वो नहीं आएंगे, तुम दे दो। नहीं दिया, यशोदा मैया के पास में गई और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं अभी देती हूँ। यह कहकर कृष्ण के पास में गई और उस सूबे को पकड़ लिया, कृष्ण के हाथ से छीन लिया। दिन रात पशु पक्षी में खेलता रहता, अभी तुम्हारे पिताजी भोजन के लिए बैठे, स्नान नहीं किया, इसलिए कृष्ण को जल्दी से पकड़ करके शासन करते हुए स्नान करने के लिए ले गई और कृष्ण का वो सब प्लान धरा रह गया। उनको खिलाया पिलाया और ललिता विशाखा जी को वो सुख पक्षी। कुछ दिनों के बाद में ब्रज की लीला समाप्त हुई। समाप्त होने पर कृष्ण तो चले जाएंगे, कृष्ण जी ने राधा जी ने इस सुख पक्षी को आदेश दिया, हम लोग लीला समाप्त हो गई, अब हम लोग तो जा रहे हैं, अब तुम इस जगत में प्रकट रहना और भगवत भक्ति का प्रचार करना, तुम्हारे द्वारा जगत का अत्यंत कल्याण। ये तो रोने बिलखने लगे। वो लोग चले जाने के बाद में संसार में अठार को मालूम हुआ, घूमते घामते कैलाश पर गए, जहाँ हरि कथा मिले वही उनका प्राण है, वहां पर पहुंचे और पहुंचकर देखा अरे यहाँ पर तो भागवत की कथा वही हो रही है, बड़ी रसमयी। पेड़ की डाल पर बैठ गए, पार्वती की मूल श्रोता थी, सुनने लगी हूँ कारी हर रही थी, हूँ हूँ आगे कहिए आगे बोलिए, हूँ क्या हुआ। थोड़ी देर के बाद में प्रथम द्वितीय तृतीय स्कंद आया, सृष्टि इत्यादि का विषय आया, पर स्त्रियां वहां पर सो गई। कुछ रसमयी बातें हो, लीला की बातों तो वो सुन सकती है। अभी इसको सुनने में भी कितने लोगों का आंखें बंद हो रही है, और तब तक की बातें आए ना तो वो सुन नहीं सकते। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा अधिकांश लोग नहीं सुन पाते, क्योंकि माया उनको अपने राज्य से छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए नहीं सुनने देती। या तो सो जाएगा या चला जाएगा, उसको रुचि नहीं रहेगी, काम की चीज उसको मालूम नहीं। किंतु जो सौभाग्यमान और बुद्धिमान है वही सुने। पार्वती जी सो गई और सुख पक्षी गाने लगा, हूं हूं आगे करिए। इसके बाद क्या हुआ, हुंकारी करने लगे। जब दशम स्कंद समाप्त हो गया और भागवत भी समाप्त होने को हुआ तो उनको थोड़ा सा बोलता है, अरे ये तो बहुत समय हो गया। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, तो वो तो भागवत तो पूरी हो गई दस द्वादश स्कंद, तो हमने तो सुना नहीं, तो तुमने सुना नहीं तो हुंकारी कौन भरा, कोई अनाधिकारी व्यक्ति तो नहीं सुन लिया। खोजने लगे, देखा कि कोई भी नहीं। अंत में देखे गए कि कहां से शब्द आ रहा था, देखा तो वही पत्तों के कुंज से ये हुंकारी की जो आवाज आ रही थी, बस घर देखा एक हरा का टूटा पक्षी सुख पक्षी बैठा है। अरे ये पक्षी सुन लिया, ये अनाधिकारी है, इसको मार डालना चाहिए, नहीं तो भोग मोक्ष के लिए यही भागवत की कथा सुनाएगा। अनाधिकारी भागवत के कौन है जो भोग के लिए, मोक्ष के लिए, सुख के लिए, लड़की की शादी के लिए, लड़के की शादी के लिए, कोई कष्ट हो गया रोग को दूर करने में, स्वर्ग के लिए, बस इसी में इसको लगा देंगे, भगवत प्रेम के लिए नहीं सुनाएंगे। इसलिए मारने दौड़े, सुख पक्षी उड़ करके चला गया बद्रिकाश्रम में। वहां पर व्यास देव जी थे, अपनी पत्नी को वो हरिकथा सुना रहे, वो बड़े आश्चर्य से मुख खोल करके सुन रही थी, या कुछ आलस्य से ऐसा किया और उसी में वो प्रवेश कर गए, पेट में चले गए। इतने में शंकर जी त्रिशूल लेकर के आए, इधर कोई पक्षी आया तो कहिए क्या क्या चाहिए आपको। तो मैं पूछना चाहता हूँ, अगर कोई पक्षी आया सुनने के क्या जरूरत, क्या आपको जरूरत है कि वो अनाधिकारी होकर के भागवत सुन लिया, मैं उसे मारूंगा। तो भागवत कथा सुनने से क्या होता है, तो आदमी अजर अमर बन जाता है, फिर वो मरता नहीं। तो आप कैसे उसे मारेंगे, यदि अमर ही हो गया कैसे मारेंगे। उनको अपनी गलती महसूस हुई, लज्जित हो गए, प्रणाम करके व्यास जी को लौट गए। 16 वर्ष तक या 12 वर्ष तक माता के दर में रहे। व्यास जी ने कहा कि जल्दी निकल आओ, उन्होंने कहा कि मैं माया में नहीं आऊंगा, यहां पर माया है, माया माने क्या, शरीर ही मैं हूं, इस शरीर में आत्मबोध नहीं, मैं हूं और संसारिक वस्तुओं को मेरा है, मेरी है, यही माया है। माया जो नहीं है उसी को ये मान रहे, कृष्ण ही एकमात्र मेरे और कोई अपना नहीं है, इसके अतिरिक्त जो सोचता है कृष्ण के अतिरिक्त तो वो माया में, मैं नहीं आऊंगा। कैसे आओगे, यदि कृष्ण खुद आकर के कहेंगे जब मैंने माया को हटा दिया तब आऊंगा, तुम्हारे कहने से भी नहीं होगा। व्यास जी ने कहा जैसा माया हटा देता हूं, नहीं कृष्ण आ जाए। उन्होंने कृष्ण का ध्यान किया, कृष्ण आ गए, बोले बेटा तुम कौन है, तुम निकल जाओ। नहीं आप कौन है, मैं कृष्ण हूं। तो ठीक है मैं माया में नहीं आऊंगा, अच्छा माया को हटा देता हूं, और साथ ही साथ माया हटा वो और कृष्ण चले गए। और ये उनके पीछे पीछे ये सुखदेव गोस्वामी भी साधारण नहीं है, जो जनक दरबार में गए थे, जनक जी से इच्छा की थी, वो किसी और दूसरे कल्प के जनको थे, सुखदेव गोस्वामी, कृष्ण लीला वाले, ये जो श्रीमद् भागवत को प्रकाश करने वाले हैं, ये तो निगम कल्प गणितम फलम सुख मुखाद संगीतम योत भागवतम रसिका भूत भाव। ये तो रसिको भावकों को भागवत की कथा सुनाने वाले हैं, ये साधारण नहीं। उस फल को उन्होंने गोलोक वृंदावन से दिया, फल टूटा फूटा कुछ नहीं, और शिष्य परंपरा गुरु परंपरा के माध्यम से इस जगत में ले आए हैं। इस कथा को सुत गोस्वामी जी सौनोकादि ऋषियों को नैमिषारण्य में सुना रहे हैं। अब तो हो गया, अब दो मिनट, उस समय में वो उन्होंने परीक्षित महाराज जी की बात सुनाई और कैसे नारद जी ने सनक सनन सनंदन सुभाष से सुना और कैसे तीसरी बात जो हुआ वो धुंधकारी और गोकर्ण वाली, ये सब कथाओं का अवतरण किया। उसमें सनक सनंदन सनक कुमार ने नारद जी को बदला, बस वही कह करके अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा कि आज तो कथाओं का साथ चला गया है। क्यों चला गया? घर 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 में लोग, ऐसा कोई शहर नहीं है, गांव नहीं है जहां पर हरी कथा नहीं होती है, भागवत की यह सप्ताह नहीं होता, किंतु अर्थ के लोग से करने के कारण उन कथाओं का साथ चला। यदि इसमें लोभ नहीं होता अर्थ के लिए तो ये काम करती, किंतु जो अर्थ का खुद, जो पाठक अर्थ का लोभी है, वो कथा सुनाएगा और उसको भी अर्थ का लोभ है तो श्रोताओं पर क्या फल होगा, वो भी अर्थ चाहेगा, इसलिए कथाओं का साथ चला गया। सबका सार इसलिए चला गया, चित्त तो बीचों में लगा हुआ है, क्या तुम तपस्या करेगा, ध्यान का साथ चला गया। इसी तरह भागवत पुराण इत्यादि के साथ इन लोगों ने दूर कर दिए, इसलिए वो सार नहीं, पृथ्वी इसमें आकार बनी हुई है। इसलिए यदि शुद्ध रूप से भागवत का श्रवण किया जाए तो कृष्ण और राधा जी के चरणों में प्रेम शुद्ध रूप से हो सकेगा, यही भागवत कथा का मूल सार। इसलिए कथा सुन करके राधा कृष्ण के चरणों में ऐकांतिक प्रीति हो। ऐकांतिक प्रीति माने क्या? भागवत में कहां कहीं किसी दूसरे देवताओं की पूजा की बात नहीं। अभी नवरात्रि हुआ नहीं थी, अभी नवरात्रि का क्षेत्र में नाराम जी के जन्म केस में वहां पर सब जगह दुर्गा काली इत्यादि का पूजन होता है। नौ रामचंद्र जिसके लिए जन्म हुआ उसके लिए नहीं। इसी तरह से भागवत में कहां इस प्रकार का दिखता है, श्रीमद् भागवत जैसा कोई ग्रंथ नहीं, बल्कि ब्रजवासी लोग इंद्र की पूजा करते थे, इंद्र की पूजा करा करके गोवर्धन की पूजा कराते, गोवर्धन स्वयं कृष्ण नहीं है, ब्रह्मा जी की जो लोग जीवन की पूजा करते हैं, कुरुक्षेत्र में वो भद्रकाली है, वो इसलिए भद्र हुई कि महाराज भरत जो थे उनकी रक्षा की। इसलिए भागवत में सर्वत्र देखा जाता है शंकर जी हैं, दुर्गा जी हैं और सब जितने देवता हैं सब भगवान के दास दास इस रूप में कर्म ग्रहण करते हुए राधा कृष्ण के चरणों में एकांतिक प्रेम, और वो भी होगा कैसे, नाम के माध्यम से। कलिकाल में नाम के बिना और कोई भी गति नहीं है। भागवत भी सुनेंगे, बीच बीच में महामंत्र हरिनाम होता रहेगा, इसलिए शायद उन्होंने आज सामने लिखा है विद्यमाना इच्छतो भयम जो भी नाम निर्णितम हरे नाम। इसलिए आप लोग सब समय हरिनाम करेंगे, ये भागवत का सार है। श्रीमद् भागवत में बतलाया जाए। इसलिए नाम कहते हैं, नाम में भी कौन, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसको वेद से भी पढ़ करके समझना, वेद किसी से निकला है, ये वेद से नहीं निकला वेद, बल्कि इससे निकला, श्रुति स्मृति जितनी है सब इसी नाम से निकला है। ये चारों जगहों का महा इसको करते हैं, और कुछ न भी हो कोई बात नहीं, और भागवत के उपदेशों को आज अभी मैं यही अपना वक्तव्य रख करके अपना मैं अभी समाप्त करता हूँ। कभी जो शब्द ये बोलेंगे, और शाम को 8 बजे से होगा, और फिर सवेरे 8 बजे से होगा। आप लोग नियमित रूप में आएंगे, एक एक व्यक्ति दो दो तीन तीन श्रोता और ले आएंगे, अभी श्रोता बहुत कम है। गौरवानंदे हल्के लिए ऐसा करते हैं तो संदेह देता है, क्या कर रहे हैं फिर को देखा गुरु बनाया, क्यों गुरु बनाया, हम लोग बड़े स्वार्थी हैं। पेड़ का फल, पेड़ का पत्ता, पेड़ की छाल, पेड़ की जड़, पेड़ के धड़, पेड़ के लकड़ियाँ, फूल फल सब दूसरे के लिए, अपने लिए कुछ नहीं होता, और उसका कोई, वो तो किसी का शत्रु है नहीं, फिर तो कोई उसको काटने के लिए रियायत और रुकता नहीं, और फल देने के लिए वो चाहकर से तोड़ ले, मार ले, घंटा से तब ले, और किसी को नहीं कहता कि हमारे छाया में मुकाओ, कहता है सब कुछ छाया दे फल दे, और किसी को भी विरोधी कोई काम नहीं, हमारी लकड़ी मत लो, मैं नहीं दूंगा, ऐसा संकोच इसलिए ये पेटे में हमारा जी, हाँ ये पृथ्वी में भी गुरु है, क्यों पृथ्वी को खोदो, पृथ्वी पर टट्टी करो, उसको पेशाब करो, उसके रत्न निकाल लो, उसमें तब कोयला हीरा मूंगा मोती सब नहीं मिलता है, सब खनिज पदार्थ, उसमें पानी रहता है, पानी भी निकालते हैं, उसका पक्ष चीर करके देते हैं, उस पर चलते हैं, रौनते हैं, ज्ञान देते हैं, और पृथ्वी मैया के पृथ्वी का इसमें कोई लाभ है, कोई स्वास्थ्य है, ऐसा कुछ ये नहीं, मैं भी ऐसा इसी तरह से जिन जिन चीजों को देखा सबको गुरु बनाया, आकाश को उन्होंने गुरु बनाया, आकाश में देखो ये सब शब्द है, सब प्रकार के गंध हैं, आवाज निकलती है आकाश में, नहीं चल रही आकाश, आकाश किसको कहते हैं सुनने, ये 40 बजेगी तो कैसे बजेगी सुनने से, थोड़ा सा ऐसा बजाओ तो बच जाएगी फिर तो किसी को कुछ अपने में नहीं रखता, किसी से कोई मतलब नहीं, अपना मतलब क्या है बस भगवत और किसी में कोई, इस तरह से 24 गुरु बनाए। तो जब भगवान का भजन करने लगता है प्रारंभ में सब उसका प्रतिकूल होता है, संसार परिवार जो कुछ वातावरण सब उसका विपरीत होता है, भजन करते करते मध्य में जब अधिकारी होता है तो कुछ अनुकूल कुछ प्रतिकूल बराबर बराबर हो जाता है नहीं? और जब उसे ऊपर उड़ जाता है ना तो जितना भी प्रतिकूल है सब उसका अनुकूल हो जाता है, उसकी सेवा करते हैं, तब किसी से उसको घृणा ये इत्यादि नहीं, इस तरह से अपने जीवन को क्रम सब धीरे 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 हमको कृष्ण के चरणों में प्रेम, और वही एक प्रेम चाहिए दूसरा नहीं, प्रेम एक रस होता है समझती है, है? कैसे बतलाओ, साक्षात तो उदाहरण दो, हमारी बहन की शादी हुई तुम छोटी से भी बच्ची है बहुत ही सुंदर थे तुम है ना, आप तुम भी जब किशोरी हुई 12-13 वर्ष का हुआ 14 वर्ष उस समय तुम्हारी बहन की शादी हुई 14 वर्ष की जब तुम, तो वो घर में कभी कभी आते थे बातचीत करते थे तुमसे, आप तुम कैसे बात करती थी
उसमें कुछ रस मिलता था बातों में, हंसी मजाक करने में रस मिलता था। तो प्रीति का प्रारंभिक चरण में भी प्रीति में कुछ रस होता है ना? और कृष्ण के साथ में वो प्रीति लगेगी, प्रेम होगा तो उसमें रस नहीं रहेगा। इसलिए प्रेम एक रस है जिसमें ये दुनिया भी सब खुल जाएगी। कृष्ण के प्रति ऐसा प्रेम का तो ये प्रेम एक होने पर भी इसके तरह तरह से रूप है। पानी है ना, पानी भी बहुत तरह का होता है। खूब डिस्टिल्ड पानी हो, अच्छा सा पानी हो, कभी उसमें थोड़ा सा सुगंध को डाल दिया जाए, उसका रस मिला दिया जाए तो वो पीने में, जैसे आजकल कोका कोला या क्या क्या ये सब क्या चीज है, पानी तो है ना, किंतु कुछ चीजें लगा करके ऐसा बना दिया लोकप्रिय हो गया जो इस पानी में टेस्ट नहीं है। ठीक तो दोनों में लाभदायक कौन है? पानी बना, शुद्ध पानी ही लाभदायक, किंतु उसको बना दिया जाए। किंतु भगवत रस ऐसा है तो किसी देख आदमी को देख करके, एक किशोरी एक किशोर को देख करके, किशोर किशोरी को देख करके उसको क्यों देखना चाहता है, क्यों बताओ? उसमें कुछ है आकर्षण? जब जगत में ही इतना आकर्षण है तो यहाँ पर रूप की एकदम सीमा, गुणों की सीमा, उसमें एक मादकता रस रस रखता है। इसे संत लोग भजन करते हैं इस चीज को,